ہم سے تو بات کیا ہے؟ یہ تم سے بھی ادھک شریشٹھ کرشن کا سکھا یہ برجواسی ہے, گووردھن کا رہنے والا. یہ تو ہم لوگوں سے بہت اونچا ہے, کنتو یہ مہاشے جی ایسے بھان کرتے ہیں جو میں کچھ جانتا نہیں, اپنی مہیما ہی نہیں جانتے. جیسے بھی ہو آپ ان کی سہایتا. یہ کہنے کے بعد میں نار جی نے کہا, جی ہمارے مکھ میں بڑی کھجلی مچ رہی ہے. کھجلی کیوں؟ اس بالک کو دیکھ کر کے ہمارے ہردے میں برج کی مہیما کچھ بولنے کے لیے ہمارے مکھ میں جیوا میں کھجلی مچ رہی ہے. بھکتی کا پردھان لکشن یہ ہے, جس کے اندر میں بھکتی ہے وہ مون نہیں رہ سکتا. مونی لوگ کون رہتے ہیں؟ نرپشیش بادی لوگ مونی رہتے ہیں. کیوں؟ ان کی درشتی میں کرشن بھی بھگوان نہیں, وہ مایا جکت بھگوان ہے. رام اتیادی جتنے بھی اوتار ہیں سو اپادھک برہم ہیں, نروپادھک برہم نہیں ہے. جب لوکک پرمارتھ کی کسی پرکار کی اچھا نہیں رہ جاتی, سب سماپت ہو جاتی ہے, لوکک بھی پرمارتھ کی کچھ اچھا نہیں رہے, کوئی بھی گن نہیں رہے گا, اس اوستھا کو برہم کی اوستھا اور اپنی بھی اوستھا انتم اسی کو مانتے ہیں, اس لیے وہ مون رہنا چاہتے ہیں. سب سے ویراگیہ, یہاں تک کہ بھگوت سوروپوں سے اور بھاگوت سے بھی ویراگیہ ان کو ہو جاتا ہے. بھکتوں کا ایسا نہیں, بھکتی جتنی ہوتی جائے گی شرونم کیرتنم وشنو سمرنم اور طرح طرح کی وچتر سیوائیں کریں گے, ایک پرکار کی نہیں طرح طرح کی وچتر سیوائیں, اور شرون کریں گے انوسریات اتھ ورنے دج بھکتی پرام بھگوتی پرتلبھ کامم ہرد روگ ماشو اپی ہنت اچیرین دھیر. ان کا سوبھاو ہے بیٹھ نہیں سکتا بھکت, جتنا جانتا ہے سنا ہے گرو مکھ سے اس کا انو ورن یہ دج سن سن کے انو نرنتر ورنن کرتا ہے, وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا. اور ہم ویشنو میں ایسا بتلایا گیا ہے, گرو اور ویشنو کے سامنے جا کر کے چپ چاپ مت بیٹھو یا کھڑا مت رہو. کیا کرو؟ کچھ نہ کچھ پریپرشن کرو, اسی سے ویشنو اور گرو پرسن رہتے ہیں. مون ہو کر کے بیٹھ جائے گا اسے پرسن نہیں رہے گا. جہ ہی پریکشت مہاراج جی سکھدیو کے سامنے آتے ہیں تو پربھو نے یہاں اوتار لے کر کے کیا کیا سے کارج کیے. متھرا میں جنم ہوا, گوکل میں چوں چلے گئے اور گوکل میں اتنا دن رہے تو پھر متھرا کیوں لوٹ آئے, اور متھرا میں آپ ورنداون میں نہیں رہ کر کے وہ دوارکا کیوں چلے گئے, اور وہاں پر کون کون سی بھی گائے. ایسے سب باتیں پرشن. اب ایک پرشن کا اتر سماپت ہوا پھر دوسرا پہلے سے پرستت, ایک منٹ بھی چپ نہیں رہنے دیں گے گرو. اسی میں وہ بھگوان کی لیلاؤں کا سمرن کر کے گرو بھی گدگد ہو جاتے ہیں. سوتا اور بکتا دونوں ایسے, بھکتی والے چپ نہیں رہیں گے, اس لیے ان کے جیو میں کھجلاہٹ ہو گئی. نارد جی تو سب سے سب کے آچاریہ ہیں, بھکتی مان ہیں, اس لیے کہنے لگے. کچھ لوگ ہیں ہری کتھا کہنے کے لیے کچھ کہا جائے, جو ہری کتھا کچھ بولے تو سیر پر مانو وجرپات آ گیا, وجرپات ہو رہا ہے. اور کوئی کا ہوتا ہے کب کچھ کہوں, کب کہیں کچھ کہوں. بھکتی کا سوبھاو ہے جو جیوا کو سب سمے نت کرائے گی, کبھی نہیں چپے. اس لیے نارد جی کچھ بولنے کے لیے اس سب کبھی جیب کو کاٹ رہے ہیں. تو ایسے اتنت اتم وستو میں درلبھ وستو کے لیے تم کیوں ویکت کرنے جا رہی, پھر بھی چپ نہیں رہتے. تب کہنے لگے تو یہ دیکھو تم برنداون کا رہنے والا ہے, برج کا رہنے والا ہے, گووردھن کا رہنے والا ہے, تم کرشن کا اتنت پیارا ہے, तुमको यहाँ पर अच्छा नहीं लग सकता,
यदि ब्रज को पाना है तो एक बात करो,
लौकिक सद्बंधु की भांति कृष्ण से संबंध रखकर लौकिक अपना बंधु मानो, लौकिक शब्द का प्रयोग किया। लौकिक शब्द बंधु माने क्या, जैसे यहाँ पर अपना लौकिक बंधु होता है, जैसे भाई होता है, भाई से भी अधिक प्रिय कौन होता है, साला है, होगा ना, और मैया से भी अधिक प्रिय कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, सास हो जाएगी, ये सब लौकिक सद्बंधु की भावना है। इसे लौकिक सद्बंधु की भांति कृष्ण से प्यार करें और उनकी सेवा करें, यही ब्रज का उत्तम भाव है। इसलिए जब तक लौकिक सद्बंधु की भावना नहीं आएगी, ब्रज रस में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। देखो ये भावना कैसे आएगी, भागवत में उन लीलाओं का प्रकाश किया गया, उन भागवत की लीलाओं को बड़े कैसे सन्निविष्ट चित्त से आसक्ति के साथ में श्रवण करना चाहिए। जैसे यशोदा जी की ममता है कृष्ण में, नंद बाबा की ममता है, सखाओं का है, गोपियों का है, इसी का ये दशम स्कंद में पहले से लेकर के 90 अध्याय तक ये वर्णन किया गया। दो प्रकार की मैयाओं का या तीन चार प्रकार की मैया और बाप का भी वर्णन किया गया, द्रोण, धरा, कश्यप, अदिति और वसुदेव, देवकी, कौशल्या, दशरथ, नंद और यशोदा, इतने माओं का वर्णन किया गया। और इसमें तारतम्य दिखलाया कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति स्नेह, और इनके स्नेह के अनुसार ही भगवत आविर्भाव। सभी के लड़के हैं, यशोदा जी का कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम है, जितना अथाह अनंत, कौशल्या जी का या वसुदेव देवकी जी का कुछ कम है, उससे भी वसुदेव देवकी से भी कम है कौशल्या और दशरथ, उससे भी कम है कश्यप अदिति का, और द्रोण धरा इत्यादि का तभी पुत्र ही नहीं हुए, उन्होंने तो तपस्या की थी। अंतर क्या है, ऐश्वर्य भाव के ऊपर में माधुर्य भाव के अंतर में अंतर है। क्रमशः ऊपर से चलेंगे तो माधुर्य कम होता गया है, सद्बंधु लौकिक सद्बंधु का भाव कम होता गया, और जब नीचे से चलेंगे तो ऊपर से ऊपर तक ऐश्वर्य भाव कम होता जाए। लौकिक सद्बंधुवत माने क्या, जैसे लौकिक हमारे संबंध माता पिता इत्यादि से है, पुत्र को माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, किंतु प्यार में वो भूल नहीं जाता, करता है रोज प्रणाम। आप लोगों ने माता पिता को रोज प्रणाम किया था, कोई नहीं। जब बड़े हो जाते हैं तो इसके बाद में बहुत दिनों के बाद में जब मिलन किसी प्रकार से होता है तब उनके पैर एक बार छू लिया, फिर नहीं, बस पुत्र सामने आया और मैया क्या कर रोने लगी और गले से पकड़ लिया, आंसुओं से भिगा दिया, बस यही। और बेटा आया तो मैया मैया या पिताजी कह दिया, बस इसी में हो गया। सखा के साथ में सखा बहुत दिनों पर मिलते हैं तभी अरे तरह से ही और गले से मिल जाएंगे। लौकिक सद्बंधुवत भाव होना चाहिए, नारद जी का पहला शिक्षा। कैसे आएगा, भगवान की ऐश्वर्यमय लीलाओं को सुन करके प्रभु के प्रति साध्वस भाव अर्थात तो ऐश्वर्य भाव बढ़ेगा, उनके प्रति क्या विभुता का भाव आएगा। जब ब्रह्मा और सहर्ष शीर्षा का भाव सुनेंगे, देवकी वसुदेव का, कौशल्या इत्यादि का भाव सुनेंगे, उसमें ऐश्वर्य भाव है। जब कृष्ण का यशोदा जी के साथ में सुनेंगे तो वो भाव नहीं रहेगा, न तो कृष्ण का माता के प्रति और न माता का पुत्र के प्रति, सद्बंधु भाव। इसी को श्रीमद् भागवत में दिखलाया गया। इन लीलाओं को सुनने के साथ साथ में सुनने से भी मनोहारी है। कैसी लीलाएं हैं वो श्रीमद् भागवत दशम स्कंध के चतुर्थ श्लोक क्या है? निवृत्त तर्षै उपगीयमानात् बहु सदा श्रोत्र मनोभिराम कह उत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमान विरज्जेत बिना पशुधा। वो पशु है, कैसा? आत्महत्या करने वाला पशु के समान नराधम है। कौन? जो भगवान की ऐसी लीला कथाओं का जो आपने वर्णन किया और वर्णन कर रहे हैं, इन कथाओं से विरत हो, विशेष करके निवृत्त तरसई, समस्त प्रकार की तृष्णाओं से, आकांक्षाओं से, कामना वासना से, यहाँ तक कि माया से भी आप निवृत्त हैं। निवृत्त तरसई, तरसई माने प्यास, विषयों को ग्रहण करने की पिपाशा जिनकी समाप्त हो चुकी है, कोई भी कुछ विषय की पिपाशा, ये कैसे हो? परमार्थी का रस का पान जिसने पिया, फिर ये लौकिक पिपाशा नहीं रहेगी। इसलिए निवृत्त तरसई उपगीयमानत, उनके मुख से गान हो रहा है और उसका ज्योति कोई पान कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी को आपने सुना, जन्म होते ही घर से निकल गए, पिताजी हा पुत्र कह रहे हैं और वन जंगल से प्रतिध्वनि आ रही है, हा पुत्र कौन, पुत्र कौन बेटा। इसके बाद में वो चले गए और उस समय में किन्नरियां अस्पराएं स्नान कर रही हैं, इनको देख करके उनको लज्जा नहीं, और व्यास देव को बूढ़े श्वेत केश दाढ़ी और उनको देख करके लज्जा आई। इन्होंने पूछा, जी हमारे बेटे को नौजवान देख करके तुमको लज्जा नहीं और हमको देख करके लज्जा रही है? मैं तुम्हारे बाप का, तुम्हारे मैं पिता का, पिता का पिता के उम्र कहूँ? उन्होंने कहा, जी उन्होंने तो पूछा नहीं, मैं नंगी हूँ कि क्या हूँ, हम लोग हैं
लड़की है
कि लड़की अथवा लकड़ी है, नहीं समझ सका। और आप पूछ रहे हैं, आप में ये देह का ये कुछ भान है? उनमें तो है नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी ऐसे संसार से विरक्त हैं, जनक की सभा में गए उनसे मिलने, डोढ़ियों पर कितने दिन रोका और अस्पराओं से भी उनकी सेवा में लगा दिया, यहाँ तक कि सुनैना जी को उनके साथ में बैठा दिया, किंतु नारद जी उतर करके सुनैना को प्रणाम करके नीचे बैठ गए, वो जैसे के तैसे बैठे। ऐसे निवृत्त तरसई उपगीयमानत, उनके मुख से निकला हुआ, निकली हुई जो हरि कथा हो, और कैसी हरि कथा, एकदम सीमा के अंतिम तक गोपी भाव इत्यादि रास तक की कथाओं का वर्णन किया गया। इसे जो विरत रहता है वो कैसा? पशुओं के समान। अरे इसमें तो किसी को भी, कर्मी ज्ञानी तपस्वी योगी सभी को इसमें आनंद है। जैसे इसमें इसके दो चीज प्रकार से सुना जाता है, एक तो इसकी कथाएं ही ऊपर से ही बड़ो मनोहारी है, कानों को सुंदर लगती है, और दूसरी बात यदि इसका कोई अर्थ व्याख्या और शब्दों का यथार्थ रूढ़ इसकी मुक्त प्रग्र वृत्ति से इसका अर्थ यदि कोई श्रवण करके समझ सके तो कहने। इसलिए इन कथाओं को सुन करके कौन ऐसा है जो इसे विरक्त होगा, सुखदेव गोस्वामी जैसे आज प्रकार। तो हम लोग दो प्रकार से सुनते हैं, एक तो कि जानने के लिए ऐसे ही, कुछ लोग साधन करने के लिए सुनते हैं, तो साधन करने के लिए साधारण लोगों के मुख से सुनेंगे, उसका अर्थ, उसका मनोहारी लीला जैसे दामोदर लीला है, कोई अर्थ भी ना जाने कृष्ण कैसे भाग रहे हैं, कैसे यशोदा मैया पीछे से पकड़ रही है, फिर उनको पकड़ लिया, उनको उखल में बांध दिया, फिर पेड़ गिर गया और वो जमलार्जुन निकल करके स्तुति कर करके चले गए, और सब कथाएं हैं ऐसे ही बोलो। और जब भी इस लीला का अर्थ समेत भीतर में प्रवेश करके सुनते हैं तो और आस्वादन होता है। प्रत्येक लीलाओं का ही अत्यंत सुंदर सुंदर भाव है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ दिया है वो चैतन्य शिक्षा में कुछ सूत्र के रूप में दिया है। चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी, सनातन गोस्वामी ने भी श्लोकों के जहाँ पर उन्होंने व्याख्या की उसमें ये सब चीज़ों का भाव दिया है। तो हम लोग पहले उसका तो सुनेंगे लीला और उसके भीतर में क्या तात्पर्य उसका है इस रोग को, और फिर उसको जान करके हम साधन भजन करें। यदि हम लोग, साधारण लोग तारतम्य नहीं समझते, देवकी वसुदेव का नंद बाबा के साथ यशोदा जी से क्या तारतम्य है प्रेम का, उनके समझ में नहीं आए, वो सबको एक समान देखें। किंतु जो भक्त मध्यम अधिकारी में आकर के गुरु की सेवा करता है, गुरु जी की, वो लोग कुछ कुछ समझेंगे। नारद जी उनको अब समझाने लगे। उन्होंने वहीं से आरंभ किया, कृष्ण का जन्म गोकुल में ही जन्म उन्होंने लिया, और वहीं से पुतना का उद्धार माने यशोदा जी की महिमा को बतलाना है। पुतना पद से पुतना का ये कुछ नहीं करना है, साधक लोग पुतना का चरित्र लेंगे ना यशोदा मैया का, इसलिए जो बाहरी लोग हैं वो पुतना का भाव को ये करेंगे, जो पुतना को उन्होंने उद्धार करके मातृ धात्री उचित गति दे दी केवल बेश के। भक्त लोग किसका विचार लेंगे, यशोदा जी का ममत्व का भाव लेंगे, ये इसमें गुण छिपा हुआ है, नहीं नहीं तो लोग बस देंगे पा ऐसे अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसा पायद अप्यसाद्वी लेभे गतिम धातृजितांग ततो कंगवा दयालु शरणं। ओहो, यशोदा जी का यहाँ पर कोई है उल्लेख, किंतु असल में ये लीला किस चीज की है? यशोदा जी के पुतना घातन, पुतना का उद्धार करके धात्री गति दी, ये बड़ी चीज है ना। यशोदा जी का कृष्ण के प्रति जो ममता है, जब पुतना लेकर के उड़ी तो यशोदा जी की क्या गति हुई? ये यशोदा जी के प्रेम का नवीनीकरण है, पुतना का वो ये वहां पर नहीं, बल्कि ब्रज में आकर के पुतना को धात्री उचित गति मिली, ये तो मेरी समझ से अच्छी कोई बात नहीं है। ब्रज में आकर के सखाओं का भाव, माता का भाव अथवा गोपियों का भाव यदि किसी को मिले तब तो ये महिमा है। इसलिए भक्त लोग दूसरे रूप में विचार करते हैं, यशोदा जी का ममत्व तो यहाँ पर विचार करते हैं। यशोदा जी ने कहा अब मैं हृदय में भीतर में रखूंगा, कभी बाहर नहीं करूंगी। यशोदा जी ने बांधा पुतना जब ले लिया गोदी में, प्यार करने लगी, कहते हैं जैसे हमको धिक्कार है यशोदा मैया, मैं इतनी सुंदरी नहीं हुई, मेरे इतने में इतनी ममता नहीं जितना इसकी ममता है, सचमुच में यही मैया है। अपने को धिक्कार देने लगी, इसलिए कुछ नहीं कहा उन्होंने। और थोड़ी देर के बाद में स्तन देने के बाद में, और जब लेकर के कृष्ण ने उसका स्तन पकड़ा और वो लेकर के उड़ी और विराट विकराल रूप धारण किया, तब यशोदा मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। इसके बाद में क्या हुआ वो उनको पता नहीं। ये जो ममत्व है, जो कृष्ण को थोड़ा सा भी कोई कष्ट हो और उसको सह नहीं सकना, ये ममत्व है, ये ममत्व सद्बंधु ये होना चाहिए। मान लिया कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, पुजारी नहीं रहा, पुजारी किसी काम से अस्वस्थ हो गया या कहीं चला गया किसी काम से, और किसी काम से वो आ नहीं सका समय पर, भोग देने में देरी हो रही है। अब हम लोग की कृष्ण में कितनी ममता है, इसको कितनी ममता है, ये विचार करके देखना। जो पूछेगा जे ठाकुर जी को भोग हुआ क्यों विलंब हुआ, जल्दी से ऐसा करना चाहिए, यदि वो विलंब हो रहा है तो झट अपने लेकर के वहां पर जाकर के भोग दे, या जो करने वाले उनसे कहे बार बार, उसे रहा नहीं जाए, ये ममत्व है ना। तो मठ में रहने पर, साधु गुरु वैष्णव के रहने पर, साधन साथ में, ऐसा ममत्व होना चाहिए भगवान के प्रति, इसलिए इस ममत्व की जरूरत है, इसलिए करें सदबंधुवत। दूसरी बात, दूसरी लीला हुई वहीं पर गोकुल में, करवट फेरने के समय में शकटासुर था ना, पहले शकटासुर तब तृणावर, शकटासुर लीला किस चीज की है, यशोदा की मैया की ममता का अब दिखला रहे हैं किसके माध्यम से, थोड़ा सा भी कृष्ण को कष्ट हो, मैया की क्या अवस्था होती है, इस पर विचार करना है हमको, हमको साधक को क्या करना है, हमको ये देखना है कि मैं भी यदि असुर होकर के जाऊं और कृष्ण के पास में, तो कृष्ण क्या करेंगे, हमारी सदगति कर देंगे, क्या सदगति कर देंगे, तृणावर्त का क्या हुआ, अधिक से अधिक मुक्ति दे दी। हम लोग को ये जरूरत है साधन के द्वारा, इसलिए हम तृणावर्त को उस रूप में ग्रहण करेंगे ना। यशोदा मैया का ममता जो है, कितनी ममता, शकटासुर प्रवेश किया गाड़ी, किसी को पता नहीं, सोचा क्या कृष्ण को ऐसे करूं निराकार होकर, हमको कोई देख नहीं सकेगा, वो पुतना आकार बना करके आई इसलिए मरी, इसलिए आकार हम नहीं बनाएंगे, और गाड़ी के अंदर में प्रवेश करके उसी के नीचे में सो रहा है, इतने अपने भार से दबा दूंगा कि गाड़ी कृष्ण के अंगों में लग करके उसे पिचट देगी और वो मर जाएगा। उसी के नीचे गाड़ी से बंधा हुआ झूला था और उसी झूले में कृष्ण पलने पर लेटे हुए थे और खेल रहे हैं, दो चार बच्चे भी हैं, और खेलते खेलते जब वो गाड़ी को नीचे करने लगा भार से और पहिया चक्का एकदम धंसने लग गया मिट्टी में और कृष्ण को अब दबाने ही वाला था, इतने में कृष्ण ने खेलते हुए अपने मुख में अंगुली या पैर की रखते हुए और थोड़ा सा पैर ऐसे कर दिया और लगा और गाड़ी चकनाचूर हो गई, उलट उलट करके सब बर्तन बर्तन सब टूट गए, वो मर गया। तब लोगों ने देखा, अरे ये तो असुर है, मरा पड़ा है, जो यशोदा जी की क्या अवस्था हुई, ये देखो अपने घर के कामों में व्यस्त हैं, कृष्ण को भूल गई हैं, क्यों, आज कृष्ण को देखने के लिए, आज उसका जन्म नक्षत्र है, देखने के लिए सब गोपियां हैं, तो इसलिए उनको खिलाना है ना, कृष्ण के संबंध से उनको खिलाना है, क्योंकि दर्शन करने आए, हमारे ठाकुर जी को दर्शन करने आएंगे, हम क्या करेंगे, प्रसाद, पुजारी जी प्रसाद दिया नहीं तो हम अपने आप रखेंगे प्रसाद के प्रति, क्यों, उनकी हमारे लाला के प्रति, हमारे आराध्य के प्रति, हमारे प्रभु के प्रति इनकी भक्ति बढ़े। और यदि हम लोग तटस्थ हैं, इस समय कोई भी हृदय की भावना नहीं है तो वो बेकार है। यशोदा मैया वहाँ पर रसोई बना रही थी, खिला रही थी, प्रार्थी खूब हो हल्ला हो रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, और इतने में गाड़ी जबकि उचकी और टूट फूट करके गिर पड़ी, बर्तन सब टूट गए, बिखर गए, और उसी समय में देखा, अरे क्या हुआ, अब वो सब काम छोड़ दिया, सभी काम, और दौड़ी कृष्ण को गोदी में लिया, देखो इसका कुछ हुआ तो नहीं, बाई चांस कुछ नहीं हुआ, और गोदी में लिया, अब इसको ऐसा नहीं रखूं, आंखों में आंसू आ गए, आज प्रभु ने इसकी बड़ी रक्षा की, हमारे गृह देवता ने रखा, गर्गाच उनको सांडिल्य ऋषि और सब ब्राह्मणों को बुलाया, एक पर एक विपत्तियां आ रही हैं इस बच्चे पर, आप लोग इसका शमन करें, बस आकर के ओंग लालाटे केशवम रक्षेत हृदय उदरे नारायणम रक्षेत वस्तक चले माधवम रक्षेत, ऐसे ही सब कर करके गाय के पूछ में गोबर और गोबर का गाय का मूत्र मिला करके और रक्षा मंत्र पढ़ने। कहते देखो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, बहुत विपत्ति इस पर आई थी बच गया, भविष्य में विपत्ति नहीं इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराना है और उनको गाय दान करना है, सोना दान करना है, इस तरह से उनको उत्सव में लगा। फिर यशोदा जी भूल गई और अपने पुत्र के लिए सर्वस्व घर में जो कुछ था वो सब दान दे रहे। हम लोग दान करेंगे ऐसा कृष्ण के लिए? ऐसी ममता प्रभु में होनी चाहिए। इस तरह से इसके बाद में तृणावर्त, तृणावर्त का प्रसंग दिया है, किंतु यशोदा मैया का ममत्व दिखलाया है। मैया जी ढूंढ रही है कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया, आंखों में धूल आ रही है, आंख बंद हो गई, कृष्ण एकदम पत्थर से भी भार, लोहे से भी भारी बन गए, गोदी में उतार दिया गोदी से। और इतने में कृष्ण की इच्छा हुई है जरा आकाश मार्ग में घूमाए, विमान से जरा देखे तो बस उसके गले में हाथ दे दिया और आकाश में गया। और गले के में हाथ देने से यदि कोई मर जाता है तो कृष्ण क्या करें, बस वहीं से गिरा, उसके शरीर पर गिरे कृष्ण, जैसे गए थे वैसे ही, इसलिए कृष्ण को कोई भी चोट नहीं लगी। और यशोदा मैया इतने में बेहोश हो जाती है, सब गोपियां आती हैं कृष्ण को उनके गोदी में लेकर के बैठाती हैं, फिर उनको होश होता है और गोपियां जगी हुई हैं, उनको भी दुख है किंतु बेहोश हो गई, बेहोश क्यों हो गई, ममता, ममता इसका कारण। इसलिए कृष्ण के प्रति ममत्व ही मूल कारण भक्ति है, ममता नहीं है। ये ममता क्रमशः शांत से बढ़कर दास्य, उससे बढ़कर के सख्य, उससे भी अधिक वात्सल्य, उससे भी बढ़कर गोपियों का, और उस गोपियों में भी बहुत प्रकार की गोपियां हैं, एक एक से तारतम्य उनकी बढ़ती चली जाती है। अंत में ये ममता सबसे अधिक किसमें है, श्रीमती राधिका। ये ममता इतनी है कि कृष्ण और दोनों एक ही हैं, इसलिए वो आह्लादिनी शक्ति है। इसलिए ममत्व के ऊपर में सब साधन भजन है। इसलिए पहले हम लोग जब साधन भजन करने के लिए जब आश्रमों में आते हैं गुरु वैष्णव, तो गुरु वैष्णव में ऐसी ममता हो, वही ममता जगत में आसक्ति कहलाती है और परमार्थ जगत में साधन में कहलाती है ममता। ममता आसक्ति में अंतर क्या है, अपने भोगों के लिए अपने सुख के लिए ममता होती है, आसक्ति होती है, ये नरक में ले जाएगी। और ममत्व जो है कृष्ण में, ये क्रमशः ऊपर लेकर के कहां ब्रज तक पहुंचा दे। इसलिए उन लोगों के साथ हम रहेंगे जिनमें कृष्ण में ममता है, उनसे ममत्व सीखेंगे। इसलिए ममत्व कहां से आरंभ होगी, चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम है, हम जिस साधन की अवस्था में जहां हैं वहीं से आश्रम के प्रति ममता, गुरु के प्रति ममता, वैष्णव के प्रति ममता, श्री विग्रह के प्रति ममता, साधन के प्रति ममता, साध के प्रति ममता, सब चीजों के प्रति ममता होना चाहिए। ये ममता जिसकी है जितनी वही उतना श्रेष्ठ है, विद्या बुद्धि पांडित्य का कोई भी नहीं है। इसलिए ममत्व करना सीखे। बहुत से लोग भजन करने आकर के तटस्थ होते हैं, तटस्थ माने क्या, किसी से भी प्रीति नहीं, निर्विशेषवादियों के लिए यह गुण है किंतु भक्तिवादियों के लिए यह अभिशाप है। मैं घर ही से बचपन से ही विरक्त था, किसी में मेरी कोई आसक्ति नहीं थी, और जब घर छोड़ करके आया अभी तक भगवान की बड़ी हमारे ऊपर में कृपा है, आज तक हमको किसी के प्रति में आसक्ति या ममता नहीं हुई। भागवत ग्रंथ में ममता है तो नहीं, वहां पर भी ममता नहीं, किस में ममता है, किसी में भी ममता नहीं। इसलिए भागवत में कहा गया न निर्भिन्नो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धितः, अत्यंत अवधि आसक्ति रहेगी, उसमें विभक्ति नहीं होगी। और अत्यंत अधिक विरक्ति है, किसी से भी कोई सरोकार नहीं है, गुरु वैष्णव से भी प्रयोजन नहीं है, किसी भी चीज में वो भक्ति के लिए अभिशाप है, उसको भक्ति कदापि नहीं होगी। इसलिए गुरु वैष्णव में ममता होनी चाहिए, आत्मसमर्पण के साथ ठाकुर जी में होना चाहिए, साधन भजन में होना चाहिए, रसोई में भी होनी चाहिए। अच्छी से अच्छी चीज बनाएंगे, ठाकुर जी को गुरु वैष्णव को देंगे। हम ऐसी रसोई आज बनाएंगे जिसको कोई नहीं खा सकता है, जो कल से हमको कोई नहीं लगाए रसोई। उन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा जे भाई मंदिर में झाड़ू लगा दो, ठीक अब ऐसा करता हूँ जो कल से ये नहीं कहें। ऐसा झाड़ू लगाया, झाड़ू भी लगा दिया और कोई धूल और जो गंदी चीज थे वो भी नहीं हटी, वैसे का वैसा। रसोई बनाने के लिए तो एक में नमक दे दिया और परमान्न में नमक दे दिया, अब फिर हमको कोई कहे ही नहीं, हमको रसोई आती नहीं। अर्चन करेंगे, अर्चन तो मैं कभी सीखा न, मंत्र याद है नहीं कर सकते, किसी भी सेवा के लिए को तटस्थ, ऐसे लोगों को भक्ति नहीं होगी। हम लोगों ने गुरुजी को देखा है, सुना है, गुरुजी ब्रह्मचारी हैं, उनका नाम विनोद ब्रह्मचारी था, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। और हमारे एक थे सिद्धांति महाराज जी, का नाम क्या था, शुद्ध स्वरूप, वो छोटे उम्र के हैं, गुरुजी जरा उम्र के हैं, गुरुजी हैं 18 वर्ष के और ये हैं 16-17 वर्ष। कलकत्ते में हबड़ा पर सब्जियां आई, 2-3 बोरे हैं सियालदह में या कहीं भी, दोनों लोगों को भेज दिया। गुरुजी जमींदार के लड़के हैं, सिद्धांति महाराज भी अच्छे घर के लड़के हैं, सुकुमार सभी कॉलेज में पढ़ने वाले दोनों, और तरकारी का बोझा करीब 2 माइल से ले आना है मठ में। दोनों दौड़े, जब स्टेशन पर आए, किस लिए, हल्का वाला हम पकड़ेंगे इसलिए नहीं, बड़ा वाला बोझा कौन पकड़ेगा, इसलिए गुरु जी पकड़ रहे हैं, जो मैं बड़ा उम्र का हूँ मैं लूंगा, और छोटा सिद्धांति मार्ग का जो मैं छोटा हूँ इसलिए बड़ा वाला मैं लूंगा, बड़े भैया को नहीं लेने दूंगा। और लड़ने लगे, जैसे मैं लूंगा तो मैं लूंगा, ऐसी सेवा कर। भिक्षा करते करते दोपहर में एकदम मध्यान्ह में जेठ महीने की ताप, और भिक्षा मांगते मांगते सवेरे कुछ आलू सिद्ध और अन्न माण खा करके गए। दोपहर में, ठीक दोपहर में पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, कलकत्ते के बड़े मैदान में गड़ेर माठ में सोए गए। प्रभुपाद जी जा रहे थे तो उनके ड्राइवर थे प्यारी मोहन जी। देखिए विनोद सो रहा है यहाँ, प्रभुपाद ने देखा और डबडबाई आंखों से देखते हुए चले गए। हमारे लिए, भगवान के लिए इतना ऐसा करते, जमींदार का अच्छा सुकुमार लड़का पढ़ा लिखा और दोपहर में एक ऐसे ही पेड़ की जड़ को नीचे दे करके सो रहा है। प्रभुपाद जी का चित्त द्रवित हो गया, भगवान जी देखते हैं, भगवान देखते हैं कि नहीं, उनका चित्त द्रवित होगा कि नहीं, इन सेवाओं से भगवान का चित्त भाई द्रवित हो, ममत्व के द्वारा। भजन साधारण की नहीं, ये सब भजन साधन है। हरिनाम करते हुए भी यदि ये चीजें नहीं आए, हरि कथा सुनते ही हरि गुरु वैष्णव के प्रति ये ऐसी भावनाएं नहीं आए, कृष्ण के प्रति ममत्व नहीं आए, तो भजन करना बेकार है। इसलिए इन चीजों को लाने की चेष्टा करनी चाहिए, यही ममत्व तो बढ़ते 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 ब्रज में ले जाएगी, वहां पर सख्य वात्सल्य और मधुर के भाव में परिणत हो जाएगी। इस तरह से नारद जी उनको सदबंधुवत इन सब लीलाओं का वर्णन करके उनका जो आशय क्या है ये बतला रहे। इसी तरह से प्रत्येक लीलाओं के अंदर में देखना, दामोदर लीला है, दामोदर लीला में वो दोनों जमलार्जुन, उन पर उद्धार करने के लिए कृष्ण ने ये लीला की तो नहीं, जो यशोदा जी का ममत्व दिखलाया, किस प्रकार से ये परब्रह्म है जो भक्त किसी प्रकार से पवित्र चित्त को भी एकाग्र किए हुए चित्त के द्वारा भी स्वप्न में भी साधन करते करते थक जाए भी मन के द्वारा भी प्रभु का ये दर्शन नहीं होगा और उस प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। काल जवन नहीं पकड़ सका, जरासंध नहीं पकड़ सका, देवताओं का मन भी नहीं पकड़ सका, ब्रह्मा जी का मन और शंकर जी का मन नहीं पकड़ सका और उसको ये मां या यशोदा गोपी अपने आंचल को यहां पर रखी थी लेकर के यहां पर बांध लिया। अच्छा तुम देखो हमारे पेट से निकला है, कहां तुम जाएगा देख, तुम अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है ना, तो हमारे पेट से ही तो निकला, तुम समझता है राजमार्ग पर कोई नहीं आएगा, सब लोग चले गए हैं गौआ चराने के लिए, अभी तुमको पकड़ लो और लठिया उठाई मारू, बस कृष्ण ऐसे हो गए मैया मत मन मार और बातों में उलझा दिया और उनको पकड़, उस पर ब्रह्म को। ये यशोदा जी का ममत्व है, सदबंधु भाव है। इसके बाद में आगे की कथा होगी। ये इस प्रकार को हम लोगों को सीखना चाहिए, ये सब साधन में ही इन चीजों को सीखना है। ममत्व कैसे आए, गोपी भाव माने क्या, मूर्तिमान ममत्व। यशोदा जी का जितना ममत्व कृष्ण के प्रति है, राधा जी का ममत्व के साथ में तुलना करो। कभी ऐसा नहीं सुनते हैं कि यशोदा जी बावरी हो गई और उनको प्रेम वैचित्र्य और प्रेम वैचित्र्य में जो आलाप जो होता है प्रजल्प इत्यादि दिव्य उन्माद ये सब हुआ यशोदा जी को नंद बाबा को, ये नहीं। दिव्य उन्माद किसको हुआ, कृष्ण में जिनकी जब से जिसकी सबसे आस वो दिव्य उन्माद, इससे भी बढ़ करके इसके बाद में प्रेम वैचित्र्य इत्यादि भाव है, इससे भी बढ़ करके मादन का भाव है, मिलन में ही एकदम विरह का भाव जगता है, उसमें समस्त प्रकार की भावनाएं आती हैं, ये किसी में नहीं है, ये ममत्व के ऊपर में निर्भर है। ये ममत्व हम लोगों को अभी से सीखना चाहिए, ममत्व सीखना ही साधन है। आज तक वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च। आइए ननुमान जी
अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं भवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्यजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम।
आजकल वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में भी सावन का महीना है, रिमझिम कर वर्षा भी हो रही है, चारों तरफ में हरियाली छाई है, नए नए घास नए नए पेड़ों की पत्तियां चारों तरफ में, पशु पक्षियों को भी बहुत उमंग है, माता पिता के हृदय में भी कुछ उमंग है, बेटियों के हृदय में भी उमंग है, जब हम बिहार में जाएंगे और वहां पर घर में झूले लगे होंगे, आम का पेड़ या कदंब का पेड़ पीछे कहीं होगा, झूला लगा करके हम बड़े आनंद के साथ में झूलेंगे, ब्रज में विशेष करके गांव-गांव में घर घर में प्रत्येक लड़कियों के हृदय में ये सब भावनाएं हैं। राधा जी या जितनी ब्रज की सखियां हैं अपने अपने ससुराल में हैं। राधा जी केवल दरवाजे पर कभी आती हैं, कभी भीतर में जाती हैं। भैया नहीं आया, मैया ने या पिताजी ने किसी को भेजा नहीं। सावन महीना अब जा रहा है, जो दिन आ रहे हैं वो फिर नहीं आएंगे, जो चले जा रहे हैं। भीतर में देखा मैया ने किसी को नहीं भेजा और भैया भी नहीं आया, तो वो भीतर ही भीतर रोने लग गए। प्रतिवर्ष आता है किंतु आज नहीं आया, और ये तीज आई हरियाली थी, दो दिन विशेष करके आज और कल होती है। आज होली कहाँ, झूला कहाँ पड़ेगा, पीहर में, और कल कहाँ पड़ेगा, नंदगांव में। पीहर में जो झूला पड़ेगा उसको कौन झूलाएगा, और नंदगांव में जो झूला पड़ेगा। इस तरह से ब्रज के लिए बहुत ही मनोरम दिन है। उस दिन में ब्रज में वो लड़कियां जिनकी शादी हो गई हैं, जिनके घर से कोई लिवाने के लिए नहीं आया, वो बच्चियां क्या करती होंगी, लड़कियां आज रोएंगी, अपने को दुर्भागा समझेंगी। समझे जी, हमारा माता और पिताजी हमारे नहीं है, यदि रहते तो जरूर बुलाते, और पिताजी भी हैं तो जो नहीं बुला रहे हैं इसलिए दुखी हूँ। तो उसी तरह से आज सवेरे तक देखा जो कल तक कोई नहीं आया, कल आ जाना चाहिए था नहीं आया। अनमनीषी हैं, कभी घर में जाती हैं, कहीं बाहर में देखती हैं, पथ के इधर उधर में देख रही हैं, किंतु कोई नहीं आया। कोई बंजारा आया, बंजारा किसको कहते हैं, बंजारा मैंने
जाति का
कुछ बेचता है, बेचने के लिए कोई कुछ ले लिया और वो बंजारा, वो कुछ बेचते हैं या कहीं से आते हैं कहीं जा रहे हैं। देखा जे कोई बंजारा उधर ही से आ रहा है, तो आ रहा तो उससे बातचीत करने लगी, तू कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, तू हमारे पीहर में जाएगा, तुम हमारे बाप का नाम जानता है। बड़े आग्रह के साथ में रोवांसा सा भाव होता हुआ बोलने लगे। वो बंजारा भी अधिक उम्र का था, मानो पिता की ही उम्र का, इसलिए उसे निसंकोच होकर के वो कहने लगे, तुम हमारे पिता के समान ही हो, पिता ही जैसा संबोधन करती हुई, और उनसे कहने लगे, तू जाकर के कहना मेरे पिताजी से, मेरी मैया से, ये क्यों हमको वो भूल गई, हमको आज जरूर बुलाना चाहिए था किंतु आज बुलाया नहीं, क्यों भूल गई, भैया नहीं आया। और ये कहते कहते रोने लग गए। वो भी बेचारा वहां पर ठहर गया, सुनने लग गया, उसके भी आंखें डब डबाए, कहने लगी, तुम जहां भी जा रहे हो वहां से लौट करके चले जाओ हमारे पीहर में, और हमारे पिताजी हैं कृष्ण भानु जी, मैया हमारी है, जा करके ये कह देना कि बड़ी दुखी है तुम्हारी बेटी, कभी वर्ष में ना बुलाए तो आज तो के दिन तो बुलाना ही चाहिए। वो भी दया से पसीज गया और वो भी चला गया, लौट गया। गया वहाँ, कहा विश्वभानु जी से, कहा तुम्हारी लाडली बड़ी दुखी है, आप लोगों ने किसी को भेजा नहीं, आने के लिए उत्सुक हो रही है। इतने में श्री राम जी आए और श्री राम जी को विश्वभानु महाराज जी ने और मैया ने, ऐसे तो खाली हाथ तो नहीं भेजा जाएगा ना, बेटी के यहाँ जाएगा तो क्या ले जाएगा, और आज के दिन में क्या ले जाना चाहिए, घेवर और फेंगी। घर में पहले से प्रस्तुत था, उनको दे दिया और दे करके उनको भेज दिया। ये अपने किसी नौकर के साथ में वो सब को लेकर के और अच्छे अच्छे कपड़े और सब ले लेकियों को भेज। जब ये गए ना तो दूर से देखा, देख करके ही आनंद तो हुआ और आनंद के मारे आंसू गिरने लगे और भैया भैया करके वो ज्यों ही आया त्यों ही लिपट गई और बड़ी जोर से रोने लगी। आप लोगों को यदि बहनें होंगी तो आप लोग समझेंगे और इन लोगों के भाई होंगे तो वो समझेंगे। यदि वैसा ही लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं, बड़े प्रेम से। हमको कभी कभी संसार की बात